हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत की इस हरकत पर विहा का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था। वेदांत ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा, फिर से टोमेटो बन गई। ऐसे तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा नाम यही रखना चाहिए था। गलती कर दी उन्होंने तुम्हारा नाम विहा रख के। वेदांत उसके मजे ले रहा था, तो वहीं विहा का दिल तो जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बहुत स्पीड से धड़कते हुए विहा को ये एहसास करवा रहा था कि वेदांत की करीबी उसके लिए कितना मैटर करती है। उसे वेदांत के होठों का एहसास अब भी अपने गाल पर हो रहा था। वो वेदांत से थोड़ी दूरी बनाते हुए बोली, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपके और अनाही दी के बीच कुछ नहीं है। वेदांत ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छी बात है, तुमने मान लिया। वैसे 11 बज गए हैं, पूरा एक घंटा खराब हो गया है। ये सुनकर विहा ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरे साथ बात करना भी आपको वक्त की बर्बादी ही लगती है, कैसे पूरी जिंदगी बिता पाएंगे मेरे साथ। वेदांत को अब अफसोस हो रहा था अपने बोले शब्दों पर। उसने क्यों ही ऐसा बोला, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिल हमेशा तैयार रहता है विहा को कुछ भी समझाने के लिए, ताकि विहा का नजरिया बदल सके। वो वेदांत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हारे साथ बिताया वक्त मुझे बर्बादी कभी नहीं लगता है बच्चा, पर उस वक्त में हम अपनी बातें नहीं करते हैं, किसी और की बातें करते हैं। कभी आना मेरे पास हमारे रिश्ते की बातें करने के लिए, फुर्सत में बैठकर पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ मैं, वो भी बिना किसी शिकायत के। तुम अगर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगी तो मैं 100 कदम चलने को तैयार हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ये सब कर सकती हो। अभी तुम्हें एडजस्ट होने में बहुत वक्त लगेगा और तब तक मुझे इंतजार करना है, और ये इंतजार करते करते मैं थक ना जाऊँ इसके लिए मुझे दूसरी चीज़ों में भी मशरूफ रहना है, और उन चीज़ों को करने के लिए मुझे आराम की जरूरत है। तो चलो हम सो जाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, और अपने इस छोटे से दिमाग को ज्यादा मत चलाओ। इतना बोलकर वेदांत सोफे से उसे उठा और विहा को अपनी बाहों में उठाते हुए कमरे के अंदर ले गया। विहा उसके हाथ अपनी कमर पर महसूस कर बिल्कुल सहम उठी थी, और वो अपने मन ही मन बोल रही थी कि शायद वेदांत सही है, वो अभी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज अनाही के पीरियड्स चले गए थे और वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रही थी। रूहान बेड पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आई थी। वो चोर नजरों से अनाही को देख रहा था। अनाही ने जैसे ही स्टडी टेबल का लैंप ऑफ किया और अपना लैपटॉप बंद करके वहाँ से उठी, उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ गए, जिसे देखकर रूहान का कलेजा मानो फटने को तैयार हो गया। उसे लग रहा था उसकी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। वो अनाही को थोड़ा सा भी कम्फर्टेबल नहीं कर पाया। वो तुरंत ही बेड पर उठकर बैठ गया और बहुत ही बेसब्र आवाज में बोला, मैडम जी, आप क्यों बालकनी में सो रही हैं? अब तो मैं आपको परेशान भी नहीं करता हूँ। अनाही ने आंखें छोटी करके रूहान को देखा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पर अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे सोफे पर सोने की वैसे भी आदत सी हो गई है, मैं वहीं एडजस्ट हो जाऊंगी। रूहान ने बिल्कुल रोनी शक्ल बनाकर कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता आप सोफे पर सोने जाओ, प्लीज। अनाही अब रूहान को कैसे बताए, वो उसके सामने बोल्ड जरूर बनती है, पर रूहान की करीबी से उसे भी बहुत फर्क पड़ता है। पर फिर भी रूहान की जिद के आगे वो हार मानकर वापस अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देती है। बेड पर लेटने के बाद रूहान उससे एक दूरी बनाते हुए अपना कम्फर्टर ओढ़ लेता है, जिसके साथ ही अनाही लैंप ऑफ कर देती है। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा था, बस दोनों की धीमी सांसों की आवाजें आ रही थीं। दोनों को ही पता था कि उन्हें ऐसे नींद नहीं आने वाली है, इसलिए रूहान ने करवट बदली और साथ में अनाही ने भी। दोनों की नजरें आपस में टकराईं। बालकनी से चांद की रोशनी इतनी अंदर आ रही थी कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। अनाही ने धीरे से कहा, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? रूहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, नींद तो आपको भी नहीं आ रही है। अनाही ने कुछ सोचते हुए कहा, वो तो है, वैसे आपका कॉलेज कैसा जा रहा है, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं ना आपके? रूहान ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए एक लंबी सांस भर के कहा, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं है करने को। अनाही ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो है, पर आपके पास जवाब नहीं होते हैं। आपसे गर्लफ्रेंड के टॉपिक पर कुछ पूछो तो आप चिढ़ जाते हैं, मम्मी जी के टॉपिक पर कुछ पूछो तो भी आपका मुंह बन जाता है। अब बचा है सिर्फ कॉलेज वाला टॉपिक। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो इसका एक ही सलूशन है कि आप खुद खुद मुझे बताए कि आपको कौन से टॉपिक पर बात करनी है। रूहान ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, हाँ एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हूँ, मेरे पास ऐसा बताने के लिए कुछ है नहीं। अनाही ने आहिस्ता से अपना हाथ रूहान के हाथ पर रखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, जब आप किसी इंसान के साथ इतना वक्त बिता ले तो उसके बाद उसकी नॉर्मल बातें भी इंटरेस्टिंग ही लगती हैं, बोरिंग नहीं। जरूरी नहीं हर किसी की जिंदगी में बॉलीवुड मूवी ही चल रही हो, कभी कभी आम जिंदगी भी जीनी चाहिए। हर रोज कोई नया कांड तो नहीं होता होगा नॉर्मल इंसानों की जिंदगी में। रूहान का हाथ कांप रहा था, जिसे महसूस कर अनाही ने उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया, जिसके साथ ही रूहान देख सुकून भरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, इसके अलावा बस ऑफिस वाला टॉपिक है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ। मुझे भाई की कंपनी में ज्यादा दिन जॉब नहीं करनी है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? अनाही ने इम्प्रेस होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं क्यों नहीं आपकी हेल्प करूँगी। जितना मुझसे होगा मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगी, पर मैं आपको सजेशन दूंगी, पहले कॉलेज खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से इस पर ध्यान दे पाएंगे। रूहान ने करवट बदल कर अपना चेहरा सीलिंग की तरफ करते हुए कहा, हाँ मेरे एग्जाम तो बस खत्म होने वाले हैं, पर मैं फंड कहाँ से लेकर आऊंगा, कैसे इन्वेस्टर से बात करूंगा, ये सब बहुत क्रिटिकल लग रहा है। आप तो भाई की मैनेजमेंट टीम में काम करती हैं, आपको तो इन सब का बहुत नॉलेज होगा। अनाही को रूहान में वो बच्चा नजर आ रहा था, जैसे पहली बार उसने नर्सरी में कदम रखा हो और ABCD ख ख ग और गिनती तीनों को देखकर उसका दिमाग घूम गया हो। उसने हंसते हुए कहा, अगर आप एक दो महीने इन सब कामों के बीच गुजार लेंगे तो आपको भी इजी लगेगा। रूहान ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, रियली आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हलवा है बस सामने परोस रखा है और उसे खाना है। फिर रूहान ने वापस अनाही की तरफ चेहरा करते हुए कहा, अगर मैं अपनी कंपनी खोलने के बाद आपसे कहूं कि आप भाई की कंपनी में जॉब छोड़कर मेरे साथ काम करें तो क्या आपको ये मंजूर होगा? अनाही ने कुछ सोचते हुए कहा, सोचने वाली बात तो है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी वेदांत जी की कंपनी छोड़ पाऊंगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय की वफादारी वहीं दिखती है जहां उसके पास उससे भी ज्यादा अच्छा ऑफर हो और उसके बाद भी वो अपनी इस कंपनी में जॉब करना चाहे जिस कंपनी ने उसे जीरो से हीरो बनाया हो। तो अभी के लिए तो मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आता है कि मैं वेदांची की कंपनी छोड़कर किसी भी दूसरी कंपनी में जॉब कर पाऊंगी, बाकी वक्त के साथ देखेंगे। आप अभी से इतना क्यों सोच रहे हैं इस बारे में? अनाही की इस बात पर पता नहीं क्यों पर रूहान को बहुत बुरा लगा। उसने हल्के गुस्से में कहा,
अच्छा सही बात है, जिसके साथ जितना वक्त बिता लिया हो वो इंसान आपको उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपको वेदांत भाई इस मामले में मुझसे बेटर लगते हैं। सो जाइए, गुड नाइट, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलते हुए रूहान ने करवट बदल ली और वो बस मन ही मन की सोच रहा था कि वो अपनी कंपनी को वेदांत की कंपनी से कैसे बड़ा बनाए। गाइज ये कहानी 400 प्लस एपिसोड्स की लिखनी है मुझे, तो आपको ये स्लो मोशन पढ़ना ही पड़ेगा। आप अपनी राय बता सकते हैं, मुझे आइडियाज दे सकते हैं कि कैसे क्या फ्लो होना चाहिए। थैंक यू, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स।